मेरे युवा मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, अब आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर के बारे में, जिसे आप हम सब खासकर एथिक्स के पेपर के नाम से जानते हैं। और मुझे लगता है कि शायद ऐसा हम गलत भी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हालांकि नाम इसमें कुछ और भी है, एथिक्स है, मॉरलिटी, इंटीग्रिटी, ये सब शब्द भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इनफैक्ट सच पूछे तो इस पूरे के पूरे पेपर का जो चरित्र है वो एथिक्स के चारों ओर ही घूमता रहता है। यह इस पेपर का एक तरह से आप कह लीजिए एक्सिस है, एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि जो एथिक्स है ना, जो नैतिकता है, इस पेपर की धुरी है, और बाकी जो तथ्य हैं, बाकी जो टॉपिक्स हैं, लगभग इसी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और जब आप इस साल के मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ेंगे, और यहां तक कि यदि आप केस स्टडी वाले प्रश्नों को भी पढ़ेंगे, तो पता लगेगा कि उसके केंद्र में नैतिकता, नैतिकता और नैतिकता ही है। ये बात अलग है कि जब हम नैतिकता को पारिभाषिक रूप में पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उसकी कुछ सीमाएं बन जाती हैं, उसके कुछ लक्षण बताए जाते हैं, दूसरों के साथ उसका क्या अंतर है वह भी हम पढ़ते हैं, लेकिन इनफैक्ट इसका दायरा अपने आप में इतना अधिक व्यापक है कि उसमें दूसरी बातें ऑलरेडी समा जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो चौथा पेपर है बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है, नया है। अगर 10 साल पहले कोई पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है तो मान करके चलिए कि नया ही है, और इसको लेकर के स्टूडेंट काफी परेशान भी मुझे नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं इस पेपर में क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। दोस्तों, सच पूछे तो ये पेपर आसान ही नहीं है, बल्कि बहुत मजेदार है, और केवल बहुत मजेदार ही नहीं है बल्कि बहुत व्यावहारिक भी है। और ये बात हम भारतीयों के संदर्भ में तो और भी ज्यादा सटीक बैठती है। इसलिए सटीक बैठती है क्योंकि पेपर के जो टॉपिक्स हैं, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें हम जी रहे होते हैं। इसमें है क्या सामाजिक मूल्य? सब कुछ सामाजिक मूल्य से जुड़े हुए हैं। अब जब मैं सामाजिक मूल्य कह रहा हूं तो समाज के जो बहुत सारे अंग हैं उनके मूल्य, तो जो समाज के बहुत सारे अंग हैं और उनके जो मूल्य हैं, जब हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो सीधी सी बात है कि हमारी उनसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि भाई हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम मान करके चलते हैं कि डॉक्टर हमारी बीमारी की सही जांच परख करेगा, हमें धोखा नहीं देगा, जितनी जरूरत है उतने ही पैसे लेगा, उतनी ही दवाइयां लिखेगा, उतने ही परीक्षण कराएगा, हम मान करके चलते हैं। तो ये मेडिकल एथिक्स हो गया। हम पॉलिटिशियन से उम्मीद करते हैं कि वो ये करेंगे, हम शिक्षक से उम्मीद करते हैं, हम खिलाड़ियों से उम्मीद करते हैं, वकील से उम्मीद करते हैं, सबसे हम कुछ न कुछ उम्मीद करते ही हैं, हम अपने परिवार के सदस्यों से उम्मीद करते हैं। और हमारी जितनी भी उम्मीदें हैं ये सब क्या है? हमारे जीवन मूल्य और हमारी नैतिकताओं से जुड़े हुए हैं। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को केवल इस आधार पर देखेंगे तो मुझे लगता है कि सही मायने में आप इसके साथ न्याय कर सकेंगे और बम्पर स्कोर भी कर सकेंगे। यस, बम्पर स्कोर। दोस्तों, यह जनरल स्टडीज के चारों पेपर में एक ऐसा पेपर है जो कम मेहनत में बहुत अधिक स्कोर देता है, बहुत अधिक मार्क्स आपको दिलाता है। लेकिन देखिए, यहां चूंकि कंपटीशन की बात है तो एक तथ्य आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यदि यह पेपर सरल है तो केवल आपके लिए सरल नहीं है, यह सबके लिए सरल है। और जब सबके लिए कोई पेपर सरल हो जाता है तो वो पेपर कितना स्कोरिंग है ये मायने नहीं रखता। आप अगर 250 नंबर में मान लीजिए कि 130 ला रहे हैं तो दूसरा 125 ला रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो 135 भी ले आएगा, तो फिर हमारा स्कोर ज्यादा मायने यहां नहीं रखता। हमारा स्कोर मायने कब रखता है? हमारा स्कोर मायने तब रखता है जब हम इतना भी नहीं ला पा रहे हैं। मान लीजिए कि एक माइलस्टोन बना दिया गया है कि भाई इस पेपर में कम से कम 110 मार्क्स तो आने ही चाहिए, मान लीजिए, क्योंकि लगभग इतने मार्क्स सभी के आ जाते हैं। यहां तक मैंने देखा है कि 100 नंबर तो उनके भी आ जाते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते मेंस को, तो सीधी सी बात है कि आपको उनसे कुछ ज्यादा लाना चाहिए। तो चलिए हम एक बार उसका न्यूनतम मार्क्स 110 मान लेते हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर आप 110 भी नहीं ला पाएंगे तो ये बहुत ही खतरनाक बात होगी, और आप उससे जितना ज्यादा लेकर के आएंगे आपके लिए वो उतना फायदेमंद होगा। दोस्तों, पिछले साल के जो दो टॉपर स्टूडेंट रहे हैं, जो फर्स्ट और सेकेंड रैंक के, उनके मैं मार्क्स आपको बताता हूं। जो इशिता किशोर जो फर्स्ट टॉपर रही हैं, उनको इस पेपर में मिले 112। चलिए 112 तो एक तरह से हम न्यूनतम मार्क्स ही मान करके चलते हैं, हालांकि दूसरे पेपर्स में उनके स्कोर इतने अच्छे हैं कि वो टॉप कर गई, फर्स्ट रैंक आई उनकी। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपर है गरिमा लोहिया, उनके मार्क्स सुनिए, उनका स्कोर है 141, वहां है 112 और यहां है 141। सोच करके देखिए कि कितने मार्क्स का डिफरेंस है। इसका मतलब यह हुआ कि अधिकतम इतने मार्क्स तो स्कोर किए जा सकते हैं। मैं एक और स्टूडेंट को जानता हूं, करीब 4-5 साल पहले उनका जो स्कोर था 142 था। इसका मतलब है कि यदि बहुत अच्छे से तैयारी कर ली जाए, थोड़ी सी सतर्कता बरती जाए, तो इस पेपर में आप 135 मार्क्स तो ला सकते हैं। वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा और इसके लिए आपको कोशिश करनी भी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें आप कम मेहनत करके बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज दूसरे पेपर्स में मेहनत अधिक होती है और उससे जो आउटपुट निकल करके आएगा वो अपेक्षाकृत कम होता है। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, जब हम प्रतियोगिता के क्षेत्र की बात करते हैं, तो फिर ये बात मायने नहीं रखती है, यानी कि कौन सा पेपर स्कोरिंग है, कौन सा पेपर लेस स्कोरिंग है, क्योंकि वो सबके लिए एक जैसा होता है। इसीलिए आप इस आधार पर इस पेपर के बारे में विचार मत कीजिएगा। हाँ, ये आपके दृष्टि में जरूर होना चाहिए कि इसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। अब ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर करेंगे कैसे? फ्रेंड्स, शुरुआत में ध्यान होगा आपको मैंने कहा है कि ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल किस्म का पेपर है। व्यावहारिक दृष्टि आपकी कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी दृष्टि कितनी व्यावहारिक है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके सोचने समझने का तरीका किस प्रकार का है, यानी कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, बैलेंस्ड है, इस तरह की ढेर सारी बातें मिलजुल करके आपके उत्तर को स्वरूप देती हैं। और याद रखिए कि कम से कम इस पेपर में जो आपका उत्तर होता है, मान करके चलिए कि वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, आपके व्यक्तित्व को वो बता रहा होता है। और मुझे लगता है कि यही इस पेपर की सबसे बड़ी चुनौती भी है। आप जानते हैं कि ये पेपर दो भागों में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पार्ट बी में केस स्टडी होते हैं। उसमें कुछ केसेस दे दिए जाते हैं और उस केसेस पर बेस्ड फिर कुछ प्रश्न फ्रेम करके आपसे उनके उत्तर पूछे जाते हैं। कभी आप उनके प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए तो आपको साफ नजर आएगा कि एक न एक प्रश्न नैतिकता से जुड़ा हुआ है ही, और इसके बाद दूसरा केस स्टडी पर जो बेस्ड क्वेश्चन होगा वो ये होगा, आप क्या करेंगे। और स्वाभाविक है कि एडमिनिस्ट्रेटर बनकर के आपको यही करना है। ये जो सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट है दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत स्कोरिंग होता है, 120 मार्क्स का होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस 120 मार्क्स में आप बड़े आराम से अगर थोड़ी भी सावधानी बरतेंगे तो आप 75 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 120 में 75, थोड़ा सा हम चलिए कम कर देते हैं तो आप उसे 70 मार्क्स ले लीजिए, यहां तक आप ला सकते हैं। लेकिन सवाल होगा कि आप ऐसा करेंगे कैसे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही व्यावहारिक किस्म का क्वेश्चन पेपर है, इसके लिए आपको फील्ड में उतरना होगा, समस्याओं से जूझना होगा, समस्याओं के समाधान करने की तरफ आगे बढ़ना होगा। आप इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिकली करेंगे, केस स्टडी में आप उतने ज्यादा दक्ष हो सकेंगे। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आई है, पता लगा कि आपने वो प्रॉब्लम किसी दूसरे के कंधे पर डाल दी कि भैया तुम सुलझाओ, तो मान करके चलिए कि फिर आप केस स्टडी वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो फर्स्ट पोर्शन है, हो सकता है कि वह आपके पुस्तकों से पूरा हो जाए, लेकिन आपको ध्यान देना होगा इस बात पर कि जो इसके भी पुछल्ले होते हैं वो उतने आसान नहीं होते, वो आपके अनुभव की मांग करते हैं। जब तक उससे जुड़ा आपका अनुभव नहीं होगा या जब तक समाज के प्रति आपकी दृष्टि खुली हुई नहीं होगी, तब तक आप उन प्रश्नों के उस तरीके के उत्तर नहीं दे पाएंगे जो एग्जामिनर चाहता है और जो उत्तर आपको अच्छे मार्क्स दिला सकेंगे। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आपको मैं एक पहला प्रश्न का जो ए है वो पढ़कर सुनाना चाहूंगा। भारत में कॉरपोरेट शासन के संदर्भ में नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता से आप क्या समझते हैं? राइट, ये तो सिंपल सा है, शायद इसका उत्तर आप दे देंगे। उपर्युक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जब भी इस तरह के प्रश्न आए कि उपर्युक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अगर आप कोई लेटेस्ट लाइव एग्जाम्पल दे पाए, ऐसी घटना का उल्लेख कर पाए जो हाल ही में घटित हुई है, तो मान करके चलिए कि जो आपके मार्क्स हैं वो रॉकेट की तरह आगे ऊपर उठ करके और आपको 140 तक पहुंचा देंगे। अन्यथा यदि आप किताबों में पढ़े हुए ही उदाहरण देते हैं तो एग्जामिनर को वो चीजें उतनी अपील नहीं करती, बावजूद इसके कि जो आपने उत्तर लिखा है वो सही तो है। खासकर इस पेपर में स्कोर करने के लिए इस तरह की बातों का ध्यान रखना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आपके विचार पूछे जाते हैं। आइए इस तरह के भी एक प्रश्न को देख लेते हैं। भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति है। आपके विचार में समाज में बुनियादी मूल्यों के उत्थान के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? देखिए, अब सीधे सीधे बुनियादी मूल्यों की रक्षा के लिए या उनके उत्थान के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, पूरी तरह से आपको अपनी ओर से लिखना है। अब आप देखिए कि अब आप विचार कीजिए, इस पर पॉइंट सोचिए और लिख करके आइए। तो दोस्तों, खासकर ये जो फोर्थ पेपर है, ये बहुत ही मजेदार पेपर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, हमारे अपने जीवन से, हमारे अपने आचरण से जुड़ा हुआ पेपर है। हम समाज में उन्हें देखते रहते हैं, अखबारों में भी आप देखिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम पढ़ते रहते हैं, समाज में कहीं भी बैठ जाइए तो इसी तरह की बातें होती रहती हैं। उनमें से अब आप किस तरीके से तथ्यों को पकड़ करके और उसे आंसर में ढाल सकते हैं, ये कमाल आपको करना है। और मुझे लगता है कि थोड़े से अभ्यास के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फोर्थ पेपर के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।